पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
हमें वास्तविक उद्देश्य से दूर रखा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान से हमें अपरिचित रखा हुआ है, केवल लोक वेद के आधार से हमें ज्ञान सुनाया गया है। ये काल प्रेरित ऋषि और महर्षियों के द्वारा ये काल स्वयं ही अपने तक ज्ञान को प्रचार करवाता है और इतना ही मार्ग हमें देता है कि हम इसके जाल में फंसे रहें, जन्म और मृत्यु के अरहट के कुएं में हम पड़े रहें। परमात्मा दयालु है, पूर्ण ब्रह्म है। सतपुरुष कबीर जी अपने सतलोक को त्याग कर यहां आते हैं और हमें हमारे मूल ठिकाने का ज्ञान कराते हैं। वो क्या बताते हैं हमें यहां आकर के? हम काल के जाल में इतने भयंकर, इतने बुरी तरह फंस चुके होते हैं। हम इसी मृत्यु और जन्म के चक्कर को अंतिम मान बैठे होते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो जो संतान संपत्ति ये कार और कोठी, तुम यहीं तक सीमित हो। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये यहां पर सभी जितने भी प्राणी हैं ये सभी काल आहार है। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल नित्य खाता है और 125,000 की उत्पत्ति करता है। इसको श्राप लगा हुआ 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। अब परमात्मा हमें इसके जाल को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है ज्यो कीड़ी का नाल। हे भगवान, पुण्यात्मा जरा सी भी बुद्धि से काम लोगे काल का जाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही शीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। क्या बताते हैं कि जैसे पहले हम अभी तक भी बहुत यही बीमारी फंसी हुई है कि लड़की से ज्यादा हम लड़के को महत्व देते हैं कि अगर बेटा ना होया, बेटी से दो हो जा बेटा सा नहीं बरता। हमारे ये कसक रह जाती है कि बेटा तो होना ही चाहिए और बेटे दो हो गए, बेटी बेसिक ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कहने का भाव ये है कि परमात्मा के इस ज्ञान से हमें समझना आवेगा कि परमात्मा हमारा जो संयोग है वो देता है, बेटा हो चाहे बेटी हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने के धारणा पैदा कर रखी थी कि जिसका बेटा नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम बेटा प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न करते रहे और अब तक ये बीमारी लगी हुई है कि बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए, ऐसा जुल्म हमने शुरू कर दिया। इसके कई कारण बन गए थे, एक तो हम अपने जाल में आप फंस गए। मुट्ठी भर लोग होते हैं जो पैसे वाले, वो सारी बकवाद न्यारी चलाया करें, ज्यादा दहेज देना कि तो मोटरसाइकिल देना कि तो पता नहीं के बकवाद, तो उस तरह का सिस्टम चल जाने से गरीब आदमी के लिए बेटी बोझ बन गई क्योंकि दहेज देना पड़े था। अब तो सरकार ने कानून भी बना दिया है, लेकिन कानून तो एक नाम मात्र का है, कैन मात्र का है, ऊपर नीचे सारा काम हो रहा है। लेकिन इस ज्ञान से, जो ये तत्व ज्ञान है, इससे आत्मा मान जाती है कि हमने किसी का पैसा लेना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज बन जाएगा और वो फिर हमने देना पड़ेगा। इस प्रकार तो लड़के को बहुत महत्व दिया करती थी पहले, अब हमने नहीं इस बात को सोचना भी नहीं है, परमात्मा कुछ भी दे। जब ये ज्ञान आपका समझ में आ जाएगा, अब बेटे और बेटी में कति अंतर नहीं समझोगे, बिल्कुल मन में भी नहीं आओगी आपके, और तभी यहां से पीछा छुटेगा, तभी हमारी टेंशन मिटेगी। अब राजा लोगों का लड़का होया करता, बैंड बाजे बजाया करते, खुशी मनाया करते, बधाई बांटा करते, मिठाई बांटा करते। अब गरीब आदमी भी रीस करने लग गया, नकल करने लग गया। अब उसका ब्योंत नहीं था कि मिठाई बांटे या बैंड बाजे बजवाओ, लड़का हो जाए तो वो थाली बजा लिया करते, थाली थाली ताली नहीं थाली, जो थाली लेकर उसका डंडे मारा करते, जो तो आसपास पता लग जाता था कि उनके पुत्र वधू का बालक होने वाला था और लड़का हुआ है, थाली बाजगी और मिठाई पहले थी को ना, गुड़ बांट दिया करते, एक एक डली सब का आसपास बांट आया करते थे गरीब आदमी। तो परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जन्म बेटे ने जन्म लिया खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। यो तो आना जाना लग्या हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल है। जैसे 100,000 व्यक्ति यहां से मृत्यु प्राप्त करके ऊपर जा रहे हैं एक ही रस्ते से, और 125,000 वापिस आ रहे जन्म पाने के लिए, स्पीड खींच रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे कीड़ी के नाल देखा होगा, कीड़ी चीटियां कभी इधर भाग रही है, कुछ इधर भाग रही है, उनकी नो इधर आना जाना लग्या हो, तो कहते ऐसे जन्म और मृत्यु का प्रतिदिन ये लाइन लग रही है। और तो के खुशी मना रहा है, बेटा हो गया, फूला नहीं समानता। एक व्यक्ति का लड़का हो गया, लड़के के दादाजी ने बड़ी खुशी मनानी चाही, वो लड़का भी 10-12 वर्ष के बाद हुआ था, उनका कोई और पुत्र था नहीं। तो उस जो उत्पन्न हुआ लड़का, उसके दादाजी ने आसपास के 10-12 गांवों को इकट्ठा किया, एक एक आदमी बुलाकर, और उनको खूब मिठाई खिलाई, गुटी सूटी पिलवाई। अगले वर्ष वो लड़का उस जन्मदिन से पहले मर लिया। जब तो खुशी बधाई बांटे थे, मिठाई बांटे थे, और फिर टक्कर मार कर रो रहा पूरा परिवार। तो नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उना नू केड़ा हासा वे। कि ना जाने पल में ये काल के कर दे, के जुलम के बिजली गेर दे, तो यहां के खुशी मनाओगे तुम। टाइम पास कर लो, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, चलो सतलोक में जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, जहां बुढ़ापा नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। पुण्यात्माओं, आप यहां आते हो इस सतलोक आश्रम बरवाला में, यहां आने के बाद आपको ना तो नमक की चिंता, ना मिर्च की, ना सब्जी लेनी, ना किधर रोटी की व्यवस्था करनी, आटा लेना, और बिछे बिछाए मैट मिले, बनी बनाई रोटियां बना देती बहन बेटियां, सब्जी भंडारी बना दे, कितनी बार चाय पियो, कितनी बार रोटी खाओ, आने के बाद आपने कोई टेंशन है कोई नहीं, ये तो रिहर्सल है उस भगवान के लोक की कि वहां जाने के बाद आपको ऐसे सारी व्यवस्थाएं उस भरे पूरे लोक में हर तरह की सुविधा प्राप्त होगी। आपको वहां कुछ भी काम नहीं करना, परमात्मा की भक्ति वहां भी करनी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के चिंतन बिना रह नहीं सकती। तो वहां जो साधना होती है वो बहुत ही अच्छी न्यारी होती है, सैर सपट्टे खूब करो, वहां हर तरह की मौज मस्ती है और कभी मृत्यु नहीं होती, कभी बुढ़ापा नहीं आता, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, वहां पर सारे सुख है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद है। भाई पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वे पीले हो जाही। जब बसंत ऋतु आती है उसको पतझड़ भी बोलते हैं, तो पहले वाले पत्ते वृक्षों के पीले होकर के टूट टूट कर गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और तुरंत ही दूसरी कोपल फूट आती है और कुछ ही दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके फिर एक साल वो फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे और फिर टूट टूट के वो भी अपना विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये उदाहरण परमात्मा देना चाहते हैं कि इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु ऐसे होती है जैसे वृक्ष के पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं, तुरंत ही दूसरे उग आते हैं। जैसे ही हम बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, तो ये अल्टीमेटम आ गया कि चौकस हो ले, कभी भी टिकट कट सकती है। और तुरंत फिर पोता हो लिया, बेटे हो गए, बेटे के बाद पोते तैयार हो गए, वो कोपल फूटगी, काल का काम तैयार है। तो परमात्मा कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टेणी पात थे आज पीले हो जाही। पतझड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, इब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की याहे रीति है एक आवे एक जात। पुण्यात्मा कितना अच्छा उदाहरण दिया परमात्मा कबीर देव जी ने कि जैसे कोई परिवार का सदस्य जिसको कैंसर रोग हो जाता है या दूसरा एड्स हो जाती है या और कोई ऐसा भयंकर बीमारी हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि तेरी टिकट कटेगी, तू मरेगा। पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आने के बाद घबराना नहीं, चिंतित ना होना, इस मालिक के चरणों में आने के बाद सच्चे दिलते हैं हृदय से मालिक के चरणों में लगना। कैंसर के चाहे कैंसर की मां हो, यो मालिक आपका जीवन नष्ट नहीं होने देगा, ये गारंटीड है। लेकिन हम यहां आते हैं दोगले पड़ते हैं, क्योंकि 10 बार हमारे भगत कह लेंगे जब तो वो नाम लेना चल लगा, बिना एक बार वहां जाड़ा और लुवा लू, एक बार वहां और दिखा लू, एक मंदिर और बताया वहां धक्के खा लू, और फिर यहां आता है इस उद्देश्य से कि देख लू जब फर्क हो गया तो वहां भी चाल पड़ू। ऐसे नहीं होगा, कत्ती सुनाई नहीं होगी ऐसी। यहां आने से पहले पूरा ज्ञान समझ का आवे और ज्ञान समझने के बाद फिर इतना अटल हो जावे इस बात पे कि चाहे मरूं चाहे जीऊं परमात्मा तेरे चरणों में, फिर देख इस परमेश्वर कबीर जी के हाथ, फिर देखना इसकी चमत्कार। लेकिन हम दोगले पनमा आते हैं डुप्लीकेट से कि वो भी पूजा कर लेंगे, कहने दो गुरु जी ने ये तो गणे नियम से बता दिए, लेकिन सारे नियम पालन करोगे एक भी तोड़ दिया तो भी सुनाई नहीं होगी। यहां एक मध्य प्रदेश से आया था, उसके दोनों गुरु देख रहा, नाम लेते ही अगले महीने आया तो जो कति स्वस्थ सच्चे दिलते हैं तो उसको बताया गया था ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, सारी यहां भर लियो, ठीक हो गया। यहां उसने अपने बयान भी दिए, 30-40 व्यक्ति उसको देखकर और भी नाम ले गए। तो एक साल के बाद वो फिर आया, ने बोला जी मेरे फिर तकलीफ होगी। मखाई ई भगवान बदल गया भाई, बता क्या गलती की। तो उसने तो बताई नहीं, दूसरे कहने लगे जी ये इसने ना तो बीड़ी बेचनी छोड़ी है, कुछ दिन तक छोड़ दी थी, 2-3 महीने 4 महीने जब यो मृत्यु करने कटदा रहा था, और इसने फिर वो सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं पड़बाड़ में मर बेसिक मरिए चे चीए इब नहीं सुनेगा भगवान त्री नालायक। तन तेने सोची भगवान को भी मूर्ख बना दू, तो पुणात्मा ऐसे दुष्ट हम, ऐसे कृतगनी हो गए हम, अब क्या करे भगवान परमात्मा। कबीर जी कहते हैं अनंत करोड़ बाजी जहां ये रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंडे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारी ब्रह्मांड रचे, सौर्य जितने भी ब्रह्मांड है सब मैंने रच के इनको दिए के लिए तुम रहो इनमें, और हम ऐसे समर्थ हैं हम सब दुख निवारण कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात पर विश्वास ना करके संसारिक लोगों की बातों पर ये विश्वास कर लेते हैं, उस काल प्रेरित होकर के ये नाम खंड कर देते हैं और काल का दाव लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं क्या करूं, यू काल इन तोड़ लेता है, इनके नाम को खंड करवा देता है और फिर ये इसका बक्कल तार देता है। अब परमात्मा के बच्चे हैं हम, परमात्मा को बहुत दुख होता है जो प्राणी यहां से चला जाता है कि देख अब चला गया काल के मुंह में, नालायक बचा बचाया फिर मर गया जाके। तो पुण्यात्मा नाम लेने मात्र से कोई न सोचा मैंने नाम ले लिया और मुझे सारे ही सुख कल ही हो जाएंगे, नाम लेकर के मर्यादा निभाओगे धीरे धीरे सब हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सिंचे 100 गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा हम बोते हैं बीजते हैं, एक आम का बीज बीजा गुठली 15 दिन में तक 20 दिन में तो उसके अंकुर फूटेगा, सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी, उसकी टेक केयर संभाल रखनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे वो पौधा बनेगा। पौधा बनकर रोज सिंचाई करनी पड़ती है दूसरे तीसरे दिन, तो 10 वर्ष में जाकर के 10-12 वर्ष में आम का पेड़ बड़ा हुआ करता था। आजकल तो ये डुप्लीकेट से सिस्टम चला दिया, ये तो 6 महीने में इतना है कोकर लग जाए उसके फड़फड़ लगने, ये कोई वो चीज नहीं बनती पुराने हिसाब, फिर इसमें भी समय लगता है। कहने का भाव ये है कि जैसे एक पेड़ आम का बीज बोया वो पेड़ बनने में 10 वर्ष लगे, और 10 वर्ष के बाद देखना फिर उसके रंग उसके लाभ देखना, इतने फल लगेंगे लद पद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे, तो भी समाप्त हो। तो ये भक्ति रूपी आम का पेड़ एक तम बीज रहे हो, इसको समय दो, परमात्मा को सच्ची श्रद्धा से पूरी संभाल कर रखो, इस नाम को खंड मत होने दो। जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब जैसे किसी बहन बेटी को बड़ी मुश्किल से गर्भ रहा हो, यानी 2-4-5 वर्ष के बाद शादी के, फिर वो उस अपने गर्भ को अपने बालक की कितनी चिंता करती है, रात्रि के अंदर भी जब करवट लेती है एकदम फड़क के उठ जाती है कि मेरे बालक पर ठेस ना लगी हो और खराब ना हो जाए, ऊंचे नीचे में पैर रखते हुए भी डरती है कहीं बच्चा खराब ना हो जाए, और इतनी सावधानी जो मां करती है तो बालक वो बच्चा प्राप्त कर लेती है, वो लाल उसके हाथों में होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा, जैसे ठेस लग जाए तो वो बालक खराब हो जाता है, ऐसे ही तेरी भक्ति खराब हो जाएगी यदि तूने लापरवाही कर दी तय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे कोई बालक कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो अपने आप कहता है, हे भगवान, अब पता नहीं कहां जन्म होगा, कहां जाएंगे, पता नहीं कहां ठिकाना होगा। तो उसको अन्य व्यक्ति समझदार बैठकर सांत्वना देते हैं, कहा करें भाई, या तो सब ने मरना है, एक दो दिन आगे पाछा सब ने मरना है, क्यों चिंता कर रहा है, या तो सभी ने मरना है, सब ने जाना है। तो इस तरह वो सांत्वना देते हैं उसको। तो वैसे ही परमात्मा इस वर्क्स के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं भाई, पात झड़नता यूं कहे, जैसे एक परिवार का सदस्य मरता हुआ कहा करे, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। अब जैसे वो तरवर यानी पेड़ सांत्वना देता है उस पत्ते को, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवे एक जाते। इस काल के लोक की ये परंपरा है, एक मर गया दूसरा जन्म ले रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। और इस आने और जाने के चक्कर में कौन कौन है, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कवावे, हरहट डोर बंधे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देख्या, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। कहते हैं थारे चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इस रैट के चक्कर में, जन्म और मृत्यु के चक्कर में है। पुण्यात्माओं, शुरू में ये दास सत्संग करने लगा, जब ये परमात्मा की वाणी सुनाया करता तो मुझे न्यू लगा करता, ये श्रोता न्यू सोच रहे होंगे, यू संत ना मेंटल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने न्यू कहे, चतुर्भुजी भगवान भी जन्म मृत्यु में आते हैं। मुझे महसूस होता था कि अब सोच रहे होंगे ऐसे, और ऐसा ही होता था। जो हमसे पूर्ण रूप से परिचित हो जाते थे वो तो बिल्कुल संतुष्ट थे। वो संतुष्ट किस आधार से थे कि उनके घर में सुख कर रखे थे परमात्मा ने, इसलिए वो निश्चिंत थे, गुरु जी जो कहें फाइनल है। और जो नए सत्संग सुनते थे तो वो न सोचा करते यो वैसे बकवास करे, और फिर भी यह कहना पड़ता था क्योंकि सच्चाई थी, रुकया नहीं जा, सच्ची बात तो कह नहीं पड़ती थी। अब परमात्मा ने दया करी, एक दिन अर्ज करी प्रभु से, परमेश्वर से दास ने, हे परमात्मा, जब तक आपके बच्चे इन सदग्रंथों में आपके द्वारा बताई गई सच्चाई को नहीं देख लेंगे, गीता जी पुराण वेद, तब तक परमात्मा ये समाज आपको पहचानने नहीं गा। एक दिन हृदय से ऐसे पुकार की, फिर अगले दिन ऐसी प्रेरणा दी परमात्मा ने कि एक वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है और वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिला, ये वेद जानते नहीं। मन में ये आया कि वेद कबीर जी का भेद बता रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं वेदों में मेरी जानकारी है पूर्ण रूपेण, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है, ब्रह्म तक की साधना ही वर्णित है, ओम नाम का जाप। और पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको ढूंढो। तो दास ने फिर नए सिरे से गीता जी को पढ़ना शुरू किया इस ज्ञान आधार पर, तो सारी बात समझ में आ गई, क्योंकि सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों को समझने की मास्टर की है। और जब तक सृष्टि रचना आपके समझ में नहीं आएगी, आप इस तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते और ना आप मान सकते इस बात को। तो सबसे पहले सृष्टि रचना आपको याद होनी चाहिए, फिर कोई से ग्रंथ न पढ़ कर देख लियो, कति न्यारा न्यारा खुल जाएगा। वेदों को देख लेना, गीता जी को देख लेना, पुराणों को देखना पढ़ के, जैसे दास ने बाप को पढ़ा दिया टीवी पे प्रोजेक्टर के ऊपर। तो इस प्रकार यह बात फिर समझ में आई, इस ज्ञान को देखा, फिर प्रोजेक्टर की दया हुई, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि वैसे तो नहीं देख पाएंगे, प्रोजेक्टर दिखाए। अब हम इतने विचलित हो चुके हैं, एक भक्त कह रहा था कि मैंने आपका सत्संग सुना हमारे सीटी केबल पर, और मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा हुआ था, और कहता मैं बहुत अपने आप को माइंडेड व्यक्ति मानना करता, क्योंकि ऑडिटर था किसी सरकारी महकमे में, एडिटर जो होते हैं वो बाल की खाल काटनी होया करें। तो मैंने आपका ये सत्संग सुना, एक घंटा आता था, और मैं उस आपके सारे पॉइंट नोट करे, गीता के भी, पुराणों के, वेदों के। तो वेद तो मैंने छेड़े नहीं, मैं गीता जी मेरे पास थी, पुराण लिया सारे खरीद गए। तो आपके द्वारा बताए गए वो नंबर नोट करे फटाफट, कौन से पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर वाले, पर मेरे जच्ची को ना आप दिखा रहे थे, यकीन नहीं हुआ। मैं खुद कम से कम 1,000 रुपये लगाए, मैंने सारे ग्रंथ खरीद के लाया, फिर वो ज्यो के त्यों पृष्ठ पाए और सारी विधि ज्यो की त्यों पाई। तो मैं कति जो है ना न्यूट्रल हो गया। अब मन में ये आई कि 30 वर्ष हो गए जय गुरुदेव में जीवन खो दिया, वह कुछ भी ना पाया, आपके ज्ञान से पता लगा, नहीं तो आंख नीचे बैठे थे गुग्गू की तरह। अब पता चला अब के करूं, 30 साल वहां खो दिए, 60 साल की उम्र होगी हैं, और अब कहां जाऊं, आपके ऊपर विश्वास हो नहीं। विश्वास इसलिए नहीं हो क्योंकि मेरे मारे चेले थोड़े, और उन नकलियां के चेलियां की शिष्यों की गिनती है कोई ना, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के करोड़। तो न्यो मनमाओ भाई, क्या ये सारे बावड़े थोड़े हैं, कोई ऐसे बुद्धू नहीं है जो यहां जाते हैं, और वो जा रहे थे मैं देख हम देखा जाते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, डॉक्टर के पास कितने रोगी हों, वो डॉक्टर की दवाई को नहीं समझ सकते, यो क्या बता रहा है। उन्हें तो खान खान तो फांकी मारन तो मतलब है, आराम हो उनके भाग, ना हो उनके भाग, लेकिन डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही पहचान सकता है, बता सकता है कि ये लाभ देने की है या इस रोग की है या नहीं है। तो फिर वो कहता जी एक दिन मेरा भाग्य उदय हुआ, एकदम 1 महीने तो मैंने वो भक्ति तो छोड़ दी, वो तो कर्ण की थी नहीं, पांचों नाम काल के, ये ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम और सोम, वो के नाम थे ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, ये पांचों नाम काल के, और इन्हीं का जाप करके संतुष्ट थे। और ये मूर्ख बना रहे संत ने कहे वो सार नाम तो अग्गे मिलेगा, मरे पाछे गदा अपने पाछे मिलेगा, सार नाम कुमार के पास दे लठा टांग तोड़ेगा जो। तो पुण्यात्मा ये सब मूर्ख बना रहे हैं, काल के जाल में फंसाए बैठे हैं, आपको भी और आप भी नरक में जाएंगे। तो इस दास ने वो सब सदग्रंथ जब देखे तो उनमें ज्यों का त्यों पाया। तो भक्त कह रहा था जी मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि भी चल चलते हैं, देख कर आते हैं वहां क्या, वो क्रोथा आश्रम आया, आते ही नाम ले लिया, और आज कम से कम पूरा परिवार उनका परमात्मा के चरणों में लग गया। तो पुण्यात्मा पहली बार ये ज्ञान जब आपको सुनाया जाता है तो कभी मन मानता है कभी नहीं मानता है, लेकिन ये सत्य इतनी जबरदस्त है, इस मन को मना कर छोड़ेगी, तो इसके लिए हमने ये समझने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है, तो यह बात कति गला नहीं उतरा करती, कति भी नहीं उतरा करती। चाहे कोई किम में बता, एक समय यह दास सत्संग कर रहा था किसी के घर पे, उसने अपने मित्र को बुला रखा, सह परिवार आया हुआ। तो हम गांव घर में पाठ करते थे, वहां ज्यादा से ज्यादा 20-30-50 श्रोता आते थे, उनमें से वो 3-4 सदस्य एक ही परिवार के आए हुए थे। तो सत्संग के बाद उसने प्रसन्न किया तो उसका मित्र आ रहा था, कहने लगा महाराज जी आपने जो ये बात बताई है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि ये नाशवान है, इनकी भक्ति से लाभ नहीं होता, तो मेरे आपकी बात तो इतनी टेंशन हो रही है जिस तरह उल्टी पड़ंगे हो जाया करें आप, मतलब जची नहीं मरते आपकी बात, आप कोरी झूठ बोल रहे हो। और वो नाराज होकर चला गया। अपुण्य आत्माओं, यह सच्चाई तो थी, तब तक इस दास ने भी इन सदग्रंथों को पुराणों आदि को नहीं देखा था, परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास 100% था और उसी ज्ञान के आधार से सत्संग किया करता था। तो इस तरह की एक बार हम इसमें प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग कर रहे, 5-7 दिन का करते थे, समय हमने रख दिया शाम को 6 से 8 शाम का, सर्दियों के दिन थे, तो 5 बजे ऑफिस का टाइम पूरा हो जाता है तो वो बाबू लोग पता लग गया सत्संग हो रहा है। और पहले दिन तो इतने आगे जितने आज ये यहां बैठे हैं, पहले दिन इससे थोड़े कम आगे होंगे, यानी हमारा टेंट था अच्छा 100 फुट लंबा, वो पूरा भर गया, इतने तो नहीं होंगे, इससे चौथा हिस्सा, तो इतने हमारे लिए तो घने थे वह उस समय। तो दास ने वो कहने वो बोल बोलने जो हमारा हमने कहना था वो बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि रचना सुनाई, वो तो घंटे के पाछे टुक 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 सारे उठ के चले गए, वो 20-30-50 हम रह गए बैठे। तो फिर मन में आई वहां भगवान या तो बहुत बुंडी बनी, अरे यह साची को मान करा जी को ना, तो परमात्मा से अर्ज करी, प्रभु ये तो हमें तो समझ में आ गया कि आप हमारे मालिक हो, काल तो हमारा सुख का स्वाद ले रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है, और ये सब आपके बच्चे हैं, इन तक भी आपका संदेश पहुंचे किसी कारण से। तो मन में प्रेरणा हुई कि जब तक इन पुराणों में, गीता में और वेदों में ये प्रमाण नहीं मिलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि का, कोई नहीं मानना चाहे हम कितनी बात बना लें। ऐसी दया करी परमात्मा ने, गीता जी को देखा, ओए होए गीता बोलने वाला कहता वो परमात्मा तो कोई और है जो पूर्ण मोक्षदायक है, बग्गी सा गल गया दास कहते हैं, जी सा आएगा उसको नए सिरे से रह रहकर पढ़ा, फिर उसका ठीक से अनुवाद किया, पुस्तक बनाई गहरी नजर गीता में, उसके बाद पुराण देखे, ओहो पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, रत्रागजब सारे खजाना भरा। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होती है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। आपको भी दिखाता हूं क्योंकि कुछ भक्त श्रोता बदलते रहते हैं, नए नए आते हैं। तो सबसे पहले हमने सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, सृष्टि रचना को जानना पड़ेगा, सृष्टि रचना समझने के उपरांत हम सदग्रंथों को समझ सकेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि के बारे में आज से 600 वर्ष पहले बताया था कि धर्मदास ये सारी सृष्टि तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है, किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। धर्मदास कौन थे? ये एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, अब तो वो उज्जड़ हो रहा है, वहां ये सेठ इनके रहा करते थे, इनके दादे परदादे वहीं रहा करते थे और बहुत बड़े धनी थे। परमात्मा की चाह इतनी थी इस धर्मदास जी को कि पूर्ण समर्पित थे। एक रूपदास नाम के एक संत से उन्होंने नाम भी ले रखा था हिंदू परंपरा से। अब रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भाई विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजर अमर है और शंकर जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बता रखा था। वैसे तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक सत्र के एक ही शक्ति एक जैसी शक्ति रखते हैं, विभाग में फर्क हो जाता है इसलिए थोड़ी सी महत्व का फर्क हम मान लेते हैं। जैसे एक स्टेट के मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई बिजली पानी मंत्री है, इन सबकी एक ही पावर है, एक जैसा सत्र है, इनमें छोटे बड़े नहीं है, ये तीनों एक ही जैसे हैं। विभाग का अंतर हो जाता है क्योंकि हम माया पुजारी हैं तो हम विष्णु जी को ज्यादा महत्व देते हैं, शिव जी को इसलिए है कि हमारे भूत बाता नगड़ दे, तो इस तरह हमें नगणे पूजन लागे ब्रह्मा जी छोड़ दिया और कुछ ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, उन कथाओं के आधार से भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। लेकिन हमने यहां से पीछा छुटवाने के लिए इन सभी की मजदूरी करके यहां से बाहर निकलना होगा, पूजा नहीं करनी होती। आगे बताएंगे आपको सारी कहानी। तो धर्मदास जी को रूपदास उनके गुरुदेव ने, वैष्णु साधु था, विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी को ज्यादा महत्व दे रखा था। फिर भी हम जैसे ये दास भी पहले विष्णु जी का पुजारी था तो साथ में श्री राम कृष्ण ये तो विष्णु जी के ही उसमें आ जाते हैं चैप्टर में, तो शंकर भगवान को भी सम्मान दृष्टि से देखते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे, उनकी भी जय बोलते थे, हनुमान जी की भी, बाबा श्याम जी की भी, यानी जो सा देवता मिल गया उससे की रेल बना दिया करते हैं, यानी उन की जय बोल, सब पर ही हम आश्रित थे। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। अब पता चला है कुछ मार्ग अलग है, वो हम आपको बताएंगे आगे। तो कहने का भाव ये है कि रूपदास जी ने उस धर्मदास प्यारी आत्मा जो भगवान को चाहने वाली थी उसको ये बता रखा था कि भी 68 तीर्थ में स्नान कर ले और वहां जाने से तू तो पैसे वाला व्यक्ति है और तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता जी का पाठ किया कर डेली, एक अध्याय को जितना पढ़ सके डेली पढ़ो और भगवान विष्णु जी का कर्म कांड बता रखा था, मूर्ति का शालिग्राम बोलते हैं उसको, उसका कर्म कांड में मूर्ति को नवाते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, फिर अगले दिन कपड़े बदल देते हैं, इस तरह वो रोज करते हैं, आरती धूप दीप देकर ज्योति वगैरह लगाकर उनकी शतुति ऐसे करते थे। और एकादशी का व्रत करने को धर्मदास जी को बता रखा था रूपदास जी ने। तो जैसा भी गुरुजी मिलता है साधक तो उसके अनुसार, जैसे डॉक्टर ने जैसी दवाइयां दी, औषधि दी और जितनी बार भी खाने का आदेश दिया वो खाता है, वो अपना पूर्ण रूप से इलाज कराना चाहता है। तो ऐसे ही श्रद्धालु होते हैं, वो भक्ति करते हैं गुरु जी को डॉक्टर मान के। लेकिन ये नीम हकीम थे जो हमें गलत औषधि खिला रहे थे, इन्होंने हमारे ये रोग और ज्यादा बढ़ा दिया। तो पुण्यात्माओं एक दिन धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास जी के आदेश अनुसार 68 तीर्थ करता हुआ, 68 तीर्थों पर भ्रमण करता हुआ वो वृंदावन यानी मथुरा में पहुंच गया और वहां उसने क्या किया धर्मदास जी ने, एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, ऐसे उदाहरण है उनकी कि यहाँ श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, यहाँ रहा करते थे, गौवें चराया करते थे, गोवर्धन के ऐसे करते थे। तो वहां स्नान करने से मोक्ष मान के कि जहां श्री कृष्ण जी स्नान करते थे और जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था उसके चारों तरफ परिक्रमा देने से हमारा मुक्ति होगी, इस तरह की हमारे अंदर गलत धारणाएं नकली गुरुओं ने भर रखी थी। हमने ये विचार नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा न छोड़ के और द्वारका नगरी बनाई थी समुद्र के बीच में बहुत दूर जाकर, क्योंकि यहां रोज झगड़े रहा करते, कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर आ रहा है, कभी कंस कभी कोई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोची थी कि ये यहां तो मुझे जीने नहीं देंगे, चंत इनसे कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी दूर चला जाऊं, सारी यादों को लेकर और वो समुद्र के बीच में टापू में जाकर रहने लगे थे। उसकी एक रास्ता था, उसमें एक द्वार, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि यहां एक द्वार पर अपनी सारी सेना रख लूंगा और हम आराम से इस द्वार का मैं चैन तरहा करेंगे। द्वार इका, एक द्वार वाली नगरी, और इतनी दूर हम देख आए थे द्वारका, गए थे हम किसी वहां जामनगर में कबीर पंथी आश्रम है वो देखने गए थे एक बार, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही द्वारका है। रस्ते में हम आ रहे थे उस पर एक निशान लगा हुआ था कि इधर द्वारका 20 किलोमीटर है, वहां देखा वो पहाड़ समुद्र के किनारे पे, यहां से तो मेरे ख्याल में वह 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होगी, और उस समय तो बहुत साधन ऐसे थे जैसे ये रथ वगैरह में चला करते, वहां तो मेरे ख्याल में बहुत देर में पहुंच। इस स्थान को इसलिए चुना था वहां द्वारका को कि कोई झगड़ा करने इतनी दूर आवे को ना, आवेगा तो राय में भूखा भाखा हो लेगा, वो वापस चला जाएगा। अब तुम जिसको कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो और जहां वो घूमया करता है उसने तुम मोक्ष स्थान मान रहे हो, वो तो उस मोक्ष स्थान ने मथुरा ने त्याग के वृंदावन ने छोड़ के और वहां गया था द्वारका में टाइम पास कराया, वह भी अकल काम ना करी जो भगवान ने इसने छोड़ गया तो उड़े के रह गए। लेकिन हमारे को इतना गलत ज्ञान में रंगा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते इतनी दूर की। अब धर्मदास जी ने क्या किया, उस तालाब में नहाया, स्नान कराया उस जोड़ में जिसमें नरे कीड़े मकोड़े चलने जीव जंतु, और स्नान करके न्यू मसल मसल के नहाया। उस समय तो लोटा भर लिया एक पानी का जल का, भगवान की वह मूर्ति नवाई, कपड़े बदले, धूप दीप लाकर लगा गीता जी का पाठ करना। आपने कल भी वेदों में देखा था, आज फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं वेद एक ऐसा ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हैं हम, विशेषकर हिंदू समाज, कि इनमें जो लिख रखा है वो नो सोच लो रजिस्ट्री हो जाया करे, पक्का काम है इसके अंदर जो लिखा है, फिर उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हम परमात्मा को समझ पाएंगे कि ये कबीर इज गॉड, और परमात्मा ऐसी लीला करता है जो उसकी महिमा वेदों में लिखी है। तो वो लीला कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने नहीं कर रखी, सबकी इतिहास दास ने पढ़ रखे, आपने भी पता है परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। परमात्मा अपने बारे में स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में पहुंच जाता हूं एक सेकंड में, और फिर कभी पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी इस मृत लोक पर आ जाता हूं। किस लिए? अपनी उन अच्छी आत्माओं को ढूंढने के लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को खोजने के लिए जो काल ने इधर उधर फैला दी, फेंक दी है इस संसार में, पता नहीं कहां पैदा कर रखी है, उनको ढूंढता हूं, उनको मिलकर फिर परमात्मा यथार्थ ज्ञान बताता है। आज आपको वो वेद फिर दिखलाते हैं। पुण्यात्मा, जिस प्रकार आप जी खाना खाते हो डेली और सुबह खाना छक्के खा लिया पेट भर के और शाम ने फिर भूख लगी तो आप स्वस्थ हैं, और शाम को आपने रोटी दिखेंगी इन्हों लग गए कोना ये तो अच्छी सी नहीं लगती, रुचि नहीं बनी तो समझो बीमार हो लिए, आपके कोई गड़बड़ है शरीर में, या तो बदहजमी होगी या कोई बुखार आने वाला है। तो पुण्यात्माओं कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को मलेरिया जबर हो जाता है तो उसको रोटी कड़वी लग गया करे, कड़वी लगती है रोटियां, सेब संतरे काजू किशमिश भी जीभ पर रखेगा मनुखा दाख भी नहीं का मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि कड़वी लगती है और वो मीठी होती है। तो बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी, इतनी खराब कर दी कि मीठी वस्तु भी कड़वी लग गए। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी और ना चाहते भी खानी पड़ेगी। तो कड़वी कुनीन खा के फिर वो बुखार उतर जाएगा, फिर वो सूखी रोटी भी बड़ी रुचि से खाता है। तो पुण्यात्मा, जो प्राणी ज्यादा पापों से ग्रस्त है उसकी आत्मा पर पापों का इतना जबरदस्त प्रभाव बुखार बन गया है कि उसने राम नाम की चर्चा कति कड़वी लागन लग जाती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते हुए भी इस राम नाम की चर्चा सुननी चाहिए, ये कुनीन का काम भी ये चर्चा ही करेगी, परमात्मा का सत्संग उसकी महिमा करेगी। फिर धीरे धीरे आपका, क्योंकि कुछ ऐसे परमात्मा की वाणी से कुछ पाप आपके वाणी से नरम होते हैं, खत्म होते हैं, ये सत्संग से समाप्त होते हैं, फिर आपकी फिर बुखार उतर जाता है, पाप कर्मों का दबाव हट जाता है, तो फिर आपको सत्संग की रुचि बढ़ती है। पहले तो आप 10 मिनट भी सत्संग नहीं सुन सकते थे और फिर आपका 2-2 घंटे सत्संग सुनकर भी रुचि बनी रहती है कि शायद आगे और कुछ बताओ मालिक की चर्चा। तो जैसे स्वस्थ व्यक्ति होता है 4-5 रोटी खा के फिर भी नहीं सोचे एक और खा लूं, पर छोड़ना ही पड़ा है भाई ना, फिर पेट घना भर गया कि दिक्कत हो जा। तो ऐसे आपकी स्थिति आ जाएगी, 2 घंटे सत्संग तो आपने ऐसा लगेगा जैसे 1 मिनट में गया, और सुनाओ थोड़ी सी, तो समझो आपके पाप खत्म हो गए, आपका बुखार उतर गया वो पापों का, रुचि आपको बनेगी। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, फिर कभी जब सत्संग सुनते हो किसी कारण से, आप ये सोच बैठते हो कि कल भी गुरुजी ने ये विचार दिए थे, आज फिर वह सुना रहे हैं, ऐसे मन में आ गई तो भी आप समझ लेना कोई पाप दबाव दे रहा है, यानी ऐ रुचि नहीं बननी चाहिए। मालिक की चर्चा 100-100 बार सुने, लाख लाख बार सुने, उतनी प्यारी लगे जैसे आहार सुबह भी खाया था शाम को, फिर उतना ही रुचिकर हो तो आप स्वस्थ हैं, नहीं तो बात बिगड़ दी। तो उसके लिए क्या है कि न चाहते हुए भी जो फांकी गोली कड़वियों की मारनी पड़ती है तो वैसे फांकी सुनो। तो इसलिए अरुचि वैसे तो होनी नहीं चाहिए, एक आधा नया भक्त आता हो भी जाती है तो अवश्य इसको फिर रह रहकर सुने और फिर देखना कितना आनंद आएगा। इस दास ने 16 वर्ष हो गए ये कथा सुनाते रहे और जितनी बार भी सुनाता हूं गीसा गल है अंदर, इतना इतना आनंद आता है परमात्मा का। आपका तो मैंने बेरा को नहीं, पर जितनी बार दास ये चर्चा वैसे भी करता है या कभी कोई शब्द गुनगुनाता है मालिक का, कलेजा भर भर का आता है ये ज्ञान। और हमने कद सपने में भी ना था जो आज भगवान ने मारा गया बौछार ला दी, ढेर लगा दिया। सबसे पहले हमने भगवान पहचानना आवश्यक है, परमात्मा की ये पहचान हो जाएगी और ये पता लग जाएगा हृदय में कि जो हम सुन रहे हैं यही भगवान है और जो मंत्र हम जाप रहे हैं ये फाइनल मंत्र है, इसके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं, तो फिर आप भगत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी तब तक तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तक तू भगत बनेगा, तब तक तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, नहीं तो कोई डगमग कर देगा, अंडोला बना रखा हमारा, कोई कहता ये मंत्र कर लो, कोई कहता ये मंत्र कर लो, कोई कहता ऊपर न टांग नीचे न सर करके भक्ति कर लो, हमारी रेल बना रखी है, है, तो अब तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? कोई भी वर्मित कर देगा, दो मिनट में खराब करके आपके अंतःकरण को जाता रहेगा। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर आप डगमग नहीं हो सकते। ये दास तो यहां तक दावा करता है, जिसको ये ज्ञान हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाए ना अपन डगमग करने, तो नहीं डगमग हो सकते, वो हार कर जाएंगे आपको ज्ञान से। और यहां संसार के इन नकली ऋषि मैं ऋषियों की तो गिनती बहुत दूर है। तो आपको ऐसे रंग में रंगना चाहता है ये दास, रह रहकर ये ज्ञान सुना के। तो वो परमात्मा कहता है कि मैं अपने प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिरता हूं, एक पल में स्वर्ग में होता हूं और दूसरे क्षण में मैं पाताल में और तीसरे क्षण में मैं यहां पृथ्वी पर आ जाता हूं। पहुंचूंगा छिन्न एक में, छिन्न इतना ये समझो, ये है ये क्षण, यानी सेकंड का भी 20वां हिस्सा, इतनी स्पीड से परमात्मा था। अब इसी का समर्थन वेद करेंगे तो फिर हमारे हृदय में यह बात समा जाएगी कि सचमुच कबीर भगवान है, जिसकी वेद गुणगान करें और जिनमें परमात्मा को आंखों देखा उनकी वाणी प्रमाण दे रही है, उनके एफिडेविट है उन महापुरुषों के, उन अच्छी आत्माओं को जिनको परमात्मा मिला, साक्षात्कार हुआ, जिनको सतलोक के दर्शन करवाए। वो परमात्मा कहां रहता है? ऊपर सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम में रहता है। आपको कल भी रात्रि में दिखाया था, अब 10 मिनट का ये सत्संग सुनाकर उसके बाद आपको वो आगे की अमर कथा सुनाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9-10, हमने 9वें मंडल को देखना है। ये कहां से प्रकाशित है? ये ऋग्वेद प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये वैसे दानंद का अनुवादित नहीं है, इन्होंने गलत फीत ला रखी है, क्योंकि ये बिक जाया करता इसके नाम से। फिर भी हम इतने चक्कर में ना पड़े, हम अपना उद्देश्य लेते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, हम इसमें आपको बहुत संक्षिप्त में जो बताएंगे। अब 16वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 में ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कह रहा है कि हे परमात्मन, हे पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा है उसका ज्ञान कराएं। अभी ना अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ रखी, यहां स्पष्ट है नाम, संस्कृत में नाम है, यहां लिखना था कि हे परमात्मा आपका जो सबसे रहस्य और रहस्यमय और सबसे श्रेष्ठ नाम, आपका जो वास्तविक नाम और मंत्र का जाप नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। यहां परमात्मा के नाम का भी जिक्र किया है, शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, यानी बहुत ऊंची आवाज लगाता हुआ वो परमात्मा, उसका नाम कबीर वाणी। अब देखो यहां कबीर ये दो रह लग रहे, ऊपर भी यू रह आधे रह, कबीर गिरभी, तो इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, यू अपसर्ग लाक है, और गिर भी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिख देते हैं कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा, काव्यना कविताओं कविताओं से, काव्यना माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के दोहों के माध्यम से वो परमात्मा अपनी महिमा कबीर वाणी द्वारा बोलता है। और शिशु जगानम जानबूझकर यहां प्रकट होता है और छोटे बालक का रूप धारण करके और वो लीला शुरू करता है स्वयं, और वो परमात्मा होता है लेकिन उसको समझ नहीं सकते, उसको कवि कहने लग जाते हैं। हम यहां सिर्फ इतना लेंगे 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 में देखते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सैंसर अणिथ पदवी कविनाम तृतीयम धाम महीस शिष संत सोम विराजम अनुराजती सतुप। इसका अर्थ है कि जो परमात्मा यहां शिशु रूप धारण करके उत्पन्न प्रगट होता है, उत्पन्न नहीं होता प्रगट होता है, फिर बड़ा होकर के संत या कवि की भूमिका करता है, काव्य नाम अपनी महिमा को कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है, तो वो कबीर जिसको लोग कवि कहते हैं वो परमात्मा अमर पुरुष होता है जो अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाता है और सुगंति मरुतो गणेन यानी अब बहुत बड़े जन समूह यानी भगत समूह का वो नेता बन जाता है, सबका वो गुरु होता है। तो इसमें लिखा है कि जो संत रूप में प्रगट होता है ऋषि मना ये ऋषि कृत उस संत के द्वारा उसके संत के द्वारा बोली गई अमर वाणी वो ऋषि मना माने संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवरसा यहां लिखा है ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा यानी बहुत आनंददायक होती है। वो हजारों वाणियां बोलता है वो उस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों के भी उपाधि प्राप्त करता है पदवी कवि नाम और वो तृतीय धामम महीसे वो तीसरे धाम में रहता है। अब यहां देखना इन्हीं का अनुवाद देख लेते हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे हैं इन्हीं का अनुवाद। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम ये देव्यान और पितरान ये इन अपनी तरफ से अड़ा रखे ये सीधा लिख रखे वो उन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है तृतीयम धाम तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है विराजम विराजमान है। ये ज्ञान योगी लिख दिया इन्होंने अड़ंगा डाणा था ना वो क्योंकि महर्षि दानंद की जो थ्योरी है महर्षि दानंद क्या कहता है कि परमात्मा एक स्थान पर कहीं नहीं रहता वो तो सर्वव्यापक है कण कण में विद्यमान है निराकार है हैं, वो किसी एक देशीय नहीं है एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद कहते हो तो एक देशीय है वहां उस ऊपर तीसरे धाम में रहता है और वहां से चलकर आता है